ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का स्वागत। मैं हूं आपका मेजबान
और मैं भी हूं आपके साथ इस सफर में। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है।
कौन सी किताब है ये?
एम स्कॉट पेक की द रोड लेस ट्रैवल्ड।
द रोड लेस ट्रैवल्ड, हाँ, इसका शीर्षक ही थोड़ा मतलब सोचने वाला है, वो रास्ता जिस पर कम चला गया।
बिल्कुल,
आजकल तो हर कोई आप देखिए आसान रास्ता शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो फिर ये कम चला जाने वाला मुश्किल रास्ता क्यों? क्या इसमें कुछ खास है जो हमें आम रास्तों पर नहीं मिलता? शायद यही सवाल है आज।
हाँ, और ये किताब ना इसलिए आज भी इतनी जरूरी लगती है क्योंकि ये जीवन की जो सबसे बुनियादी सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ती। पेक साहब सीधे कहते हैं, जिंदगी मुश्किल है।
अच्छा, शुरुआत यहाँ से।
हाँ, और शायद इसी मुश्किल को समझने और अपनाने में ही असली विकास और सुकून का राज छुपा है। ये किताब देखिए मनोविज्ञान और रोजमर्रा की आध्यात्मिकता को बड़े अनोखे ढंग से जोड़ती है।
तो चलिए पहले इस किताब के पीछे जो शख्स हैं, एम स्कॉट पेक, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कौन थे वो और उनकी बातों में ऐसा क्या खास था?
जी, एम स्कॉट पेक वो एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे, मतलब दिमाग और मन के डॉक्टर।
हाँ,
और उन्होंने हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था उनके पास, ये समझिए।
अच्छा,
उन्होंने अमेरिकी सेना में भी एक मनोचिकित्सक के तौर पर काम किया और काफी ऊंचे पद तक पहुंचे थे।
सेना में काम, तो यकीनन उन्हें इंसानी स्वभाव के बहुत अलग अलग पहलू देखने का मौका मिला होगा, मतलब दबाव, अनुशासन, डर, ये सब।
बिल्कुल बिल्कुल, और यही अनुभव साथ में उनकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस थी उसका तजुर्बा, वो सब उनकी लिखाई में झलकता है। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है ना,
हाँ,
वो है उनका मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ने का नजरिया।
अच्छा,
उस जमाने में आप सोचिए, ये दोनों क्षेत्र काफी अलग अलग माने जाते थे। मनोविज्ञानी अक्सर धर्म या अध्यात्म को थोड़ा शक की नजर से देखते थे।
हाँ, ये तो है। तो पेक ने कैसे जोड़ा इन दोनों को, क्या कहा उन्होंने?
पेक का मानना था कि इंसान को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ उसके मन को नहीं, उसकी आत्मा या उसकी जो गहरे विश्वास हैं उनको भी समझना जरूरी है। वो कहते थे कि मानसिक समस्याओं की जड़ें अक्सर आध्यात्मिक खालीपन या कह लीजिए भटकाव उसमें भी होती हैं। उनमें एक डॉक्टर की पैनी नजर भी थी और एक खोजी की गहरी समझ भी।
हाँ, ये संतुलन दिखता है।
बिल्कुल, इसीलिए वो मुश्किल मनोवैज्ञानिक बातों और गहरे आध्यात्मिक सवालों दोनों पर बड़ी सहजता से बात कर पाते थे।
तो ये नजरिया ही इस किताब को खास बनाता है। अब आते हैं किताब पर, द रोड लेस ट्रैवल्ड। इसका मूल सार क्या है, किस बारे में है ये?
देखिए, ये किताब असल में ना जिंदगी जीने की एक गाइड है, लेकिन ये कोई खुश कैसे रहें टाइप की वो फौरी टिप्स वाली किताब नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
अच्छा,
इसकी शुरुआत ही होती है एक सीधी, शायद थोड़ी कड़वी लगने वाली सच्चाई से।
क्या है वो सच्चाई?
जीवन मुश्किल है। ओह, शुरुआत यहाँ से?
ये तो आम सेल्फ हेल्प किताबों से बिल्कुल उल्टा है। वो तो कहती हैं सब आसान है, बस पॉजिटिव सोचो।
हाँ, और पिक कहते हैं कि सच्चाई को जब हम पूरी तरह मान लेते हैं ना, तब असल में सुकून मिलना शुरू होता है।
कैसे?
क्योंकि तब हम समस्याओं से भागना बंद कर देते हैं। किताब का मुख्य तर्क यह है कि सच्ची खुशी समस्याओं के ना होने में नहीं है।
तो फिर किसमें है?
बल्कि उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जो मेहनत करते हैं, जो अनुशासन दिखाते हैं, जो प्यार से काम लेते हैं, उसमें है।
अच्छा, मतलब असली मजा मंजिल में नहीं, सफर में है, और खासकर अगर सफर मुश्किल हो।
हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। ये किताब उन लोगों के लिए है जो खुद को बेहतर समझना चाहते हैं, जो अपनी कमजोरियों और मुश्किलों से जूझ रहे हैं और जिंदगी में कोई गहरा मतलब ढूंढ रहे हैं। ये रास्ता आसान नहीं है, जाहिर है, इसीलिए कम चला गया है, लेकिन पेक कहते हैं कि ये रास्ता आखिर में ज्यादा संतोषजनक होता है। किताब चार हिस्सों में बंटी है ना? मैंने पढ़ा था, अनुशासन, प्रेम।
जी,
अनुशासन, डिसिप्लिन, प्रेम, लव, फिर विकास और धर्म, ग्रोथ एंड रिलीजन, और चौथा है कृपा, ग्रेस।
अच्छा,
हर हिस्सा अगले की नींव रखता है एक तरह से, पाठक को व्यावहारिक चीजों से लेकर गहरे आध्यात्मिक अनुभवों तक ले जाता है।
चलिए पहले हिस्से यानी अनुशासन पर आते हैं। अनुशासन, ये शब्द सुनते ही तो स्कूल के दिन या सख्त नियम याद आते हैं। बेक का अनुशासन क्या है, ये कुछ अलग है?
हाँ, बिल्कुल अलग। पेक के लिए अनुशासन सख्ती नहीं है, बल्कि मुश्किलों से निपटने का एक तरीका है, एक टूल किट समझिए।
टूल किट? अच्छा।
वो कहते हैं कि ज्यादातर मानसिक परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम दर्द से, मुश्किलों से भागना चाहते हैं, है ना?
हाँ, ये तो स्वाभाविक है।
अनुशासन वो औजार हैं जिनसे हम उस दर्द का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पेक मानते हैं कि ये हमें आजाद करते हैं, बांधते नहीं।
दिलचस्प, ये तो बिल्कुल उल्टी बात लगती है। कौन से हैं ये औजार? आपने कहा था चार हैं? हाँ, चार मुख्य औजार हैं। पहला है संतुष्टि में देरी, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन।
संतुष्टि में देरी,
हाँ मतलब जो जरूरी या मुश्किल काम है उसे पहले करना, और मजे या आराम को बाद के लिए टालना। जैसे बच्चे को कहें कि भाई पहले सब्जी खा लो फिर आइसक्रीम मिलेगी।
हाँ हाँ ये तो करते हैं हम।
जो लोग ये सीख जाते हैं ना, वो लंबे समय के लक्ष्यों को पाने में ज्यादा कामयाब होते हैं। ये अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की पहली सीढ़ी एक तरह से।
ये तो बहुत काम की बात है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। क्रेडिट कार्ड का बिल भरने से पहले शॉपिंग ना करना।
बिल्कुल वही है दूसरा औजार।
हाँ दूसरा।
दूसरा और बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी स्वीकार करना।
एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
जिम्मेदारी लेना।
हाँ
पाके कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी की समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें और ये समझें कि हमारी जिंदगी हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ वो दो तरह के लोगों की बात करते हैं जो संतुलन नहीं बना पाते।
कौन से दो तरह के लोग, ये जानना चाहेंगे?
एक है न्यूरोटिक।
न्यूरोटिक,
ये वो लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं, उन चीजों की भी जो उनके बस में नहीं है।
अच्छा,
जैसे
जैसे
हर बुरी बात के लिए खुद को कसूरवार मानना। ये लोग अक्सर खुद दुखी रहते हैं।
ओह,
और दूसरे
दूसरे हैं कैरेक्टर डिसऑर्डर वाले।
कैरेक्टर डिसऑर्डर,
ये बिल्कुल उल्टे होते हैं।
उल्टे मतलब?
मतलब ये अपनी किसी गलती या समस्या की जिम्मेदारी लेते ही नहीं, कभी नहीं, हमेशा दूसरों पर या हालात पर उंगली उठाते हैं।
हाँ देखे ऐसे लोग।
ये खुद तो शायद परेशान न हो पर अपने आसपास वालों को बहुत दुखी करते हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत सटीक लगता है। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोग देखते हैं ना। तो संतुलन साधना ही कुंजी है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेना, न कम न ज्यादा।
बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा औजार है सत्य के प्रति समर्पण।
सत्य के प्रति समर्पण, ये क्या है? मतलब दुनिया और खुद को वैसे देखना जैसे वो हैं, न कि जैसा हम देखना चाहते हैं।
पर ये तो मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। हम सबके दिमाग में दुनिया के कुछ नक्शे बने होते हैं, हमारी सोच, हमारी मान्यताएं। सच्चाई के प्रति समर्पित होने का मतलब है कि लगातार अपने इन नक्शों को जांचते रहना, और अगर वो हकीकत से मेल नहीं खाते तो उन्हें बदलने का दर्द सहने को तैयार रहना।
अपने बनाए हुए सच को बदलना, हाँ इसमें दर्द तो होगा। इसमें वो ट्रांसफरेंस वाले बात भी आती है शायद।
हाँ, ट्रांसफरेंस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
वो क्या है, थोड़ा समझाइए।
ट्रांसफरेंस मतलब जैसे अगर बचपन में किसी टीचर का बर्ताव आपके साथ बहुत बुरा था, तो हो सकता है आप बड़े होकर अपने हर बॉस पर बेवजह शक करें या उनसे डरें।
अच्छा,
ये आप अपने पुराने अनुभव का नक्शा नए रिश्ते पर थोप रहे हैं जो शायद सच ना हो। इस पैटर्न को पहचानना और बदलना, यही सत्य के प्रति समर्पण है।
समझ गया। और चौथा अनुशासन है संतुलन।
जी संतुलन, ये इन सबको साधने की कला है, एक तरह का मास्टर अनुशासन।
कैसे साधता है?
ये फैसला करने में मदद करता है कि कब सच बोलना जरूरी है और कब चुप रहना बेहतर, कब अपनी बात पर अड़ना है और कब दूसरों की सुनने के लिए पीछे हटना है, कब कठोर बनना है कब नरम। इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, ये समझदारी और लचीलेपन का अभ्यास है, रोज का।
तो ये हुए अनुशासन के चार औजार। इसके बाद आता है प्रेम। प्रेम के बारे में तो सब बात करते हैं, गाने लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं। पैक का नजरिया इसमें क्या नया लाता है?
पैक यहाँ हमारे जो आम रोमांटिक धारणाएं हैं ना, उन पर बड़ा सवाल उठाते हैं।
ओह,
कैसे?
वो कहते हैं कि जिसे हम प्यार में पड़ना, फॉलिंग इन लव कहते हैं, वो जो अचानक तीव्र खिंचाव महसूस होता है, दुनिया रंगीन लगने लगती है।
हाँ हाँ, वो बटरफ्लाइज वाली फीलिंग।
हाँ
वही, पैक कहते हैं वो असली प्यार नहीं है।
क्या, ये क्या कह दिया फिर? वो क्या है अगर प्यार नहीं है तो?
पीक कहते हैं ये एक अस्थाई एहसास है, टेम्परेरी, जहां हमारी अहंकार की सीमाएं कुछ देर के लिए घुल जाती हैं और हमें लगता है कि हम दूसरे में समा गए हैं।
अच्छा,
ये रोमांचक है, पर इसमें हमारी कोई मेहनत या इच्छा नहीं लगती, ये अपने आप होता है और ज्यादातर मामलों में वक्त के साथ खत्म भी हो जाता है।
खत्म हो जाता है।
हाँ, पीक मानते हैं कि ये शायद प्रकृति का तरीका हो इंसानों को जोड़े बनाने के लिए प्रेरित करने का, पर ये टिकाऊ प्यार नहीं है।
तो फिर पीक के अनुसार असली प्यार क्या है? उनकी एक परिभाषा काफी मशहूर है, मैंने सुना है।
हाँ, और वो परिभाषा बहुत गहरी है, ध्यान से सुनिए। प्रेम अपनी या दूसरों की आध्यात्मिक वृद्धि के पोषण के उद्देश्य से स्वयं का विस्तार करने की इच्छा है।
एक मिनट, अपनी या दूसरों की आध्यात्मिक वृद्धि के पोषण के उद्देश्य से स्वयं का विस्तार करने की इच्छा भारी है?
हाँ, इसमें तीन बातें खास हैं।
समझाइए जरा, स्वयं का विस्तार, आध्यात्मिक वृद्धि, ये क्या मतलब हुआ?
पहली बात इच्छा यानी विल, यानी प्यार सिर्फ एक बहती हुई भावना नहीं है, ये एक सचेत चुनाव है, एक फैसला है, रोज का फैसला।
अच्छा, मतलब फीलिंग आए या ना आए, आप चुनते हैं प्यार करना।
बिल्कुल।
दूसरी बात,
स्वयं का विस्तार, एक्सटेंड वन सेल्फ, इसका मतलब है प्यार में मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है।
मेहनत प्यार में?
हाँ, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, अपने डर और आलस पे काबू पाना पड़ता है। जैसे साथी की बात ध्यान से सुनना, तब भी जब आप थके हों या आपकी रुचि ना हो, ये स्वयं का विस्तार है।
और तीसरी बात?
तीसरी, आध्यात्मिक वृद्धि, स्पिरिचुअल ग्रोथ। प्यार का असली मकसद सिर्फ अच्छा महसूस करना या करवाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करना है, उनकी आत्मा को विकसित होने में मदद करना है, अपनी भी और दूसरे की भी।
ये तो प्यार को बहुत बड़ी जिम्मेदारी बना देता है। मतलब ये सिर्फ मजे या साथ के लिए नहीं है।
बिल्कुल।
ये निर्भरता या जिसे आजकल कोडिपेंडेंसी कहते हैं, उससे कैसे अलग है?
वो दूसरे पर बोझ बन जाता है या दूसरे को बोझ बना लेता है।
हाँ।
जबकि सच्चा प्यार आजादी देता है, विकास को बढ़ावा देता है। इसमें ईमानदारी से अपनी बात कहना, कन्फ्रंटेशन भी शामिल है, मुश्किल वक्त में साथ देना भी, और कभी कभी दूसरे की भलाई के लिए उसे जाने देना भी शामिल हो सकता है।
वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है, रिश्तों को इस नजरिए से देखना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पे, विकास और धर्म। यहाँ पे आप धर्म को कैसे देखते हैं? क्या वो किसी मजहब की बात कर रहे हैं?
नहीं, यहाँ धर्म का मतलब किसी पूजा पाठ या संगठित मजहब से नहीं है।
तो फिर?
पेक के लिए हर इंसान का धर्म है उसका दुनिया को देखने का नजरिया, उसका मानसिक नक्शा,
मेंटल मैप।
हाँ बिल्कुल, हम सब दुनिया को अपनी मान्यताओं और अनुभवों के चश्मे से देखते हैं ना, वही हमारा निजी धर्म या विश्व दृष्टिकोण है।
और आध्यात्मिक विकास मतलब इस नक्शे को सुधारते रहना, उसे बेहतर बनाते रहना।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक वैज्ञानिक नए सबूत मिलने पर अपनी थ्योरी बदल देता है, हिचकता नहीं, वैसे ही आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का मतलब है अपनी सोच, अपने नक्शे को लगातार हकीकत के करीब लाते रहना।
और ये मुश्किल है।
बिल्कुल, क्योंकि हमें अपनी पुरानी आरामदायक सोच छोड़नी पड़ती है। पेक ये भी कहते हैं कि कई बार संगठित धर्म इसमें बाधा भी डाल सकते हैं।
कैसे?
अगर वो सवाल पूछने से रोकें या बिना जांचे परखे विश्वास करने को कहें। पेक मानते हैं कि सच्ची आस्था में शक और खोजबीन शामिल है, ये एक सतत प्रक्रिया है।
और आखिरी हिस्सा है कृपा, ग्रेस।
ये क्या चीज है?
ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है।
हाँ, ये थोड़ा रहस्यमयी है। कृपा यानी ग्रेस वो बाहरी अनदेखी भलाई करने वाली शक्ति है जो हमारे विकास में मदद करती है।
बाहरी शक्ति?
हाँ, ये वो मदद है जो हमें बिना मांगे बिना कमाए मिलती है। आप देखिए, अनुशासन और प्रेम वो काम है जो हम करते हैं, कृपा वो मदद है जो हमें मिलती है।
कोई उदाहरण?
ये कैसे पता चलता है कि कृपा काम कर रही है, हम इसे कैसे पहचाने? पेशा कहते हैं ये कई तरह से दिख सकती है, जैसे कभी कभी ऐसे संयोग होते हैं जो महज इत्तेफाक नहीं लगते।
हाँ, होते हैं ऐसे मौके, सेरेंडिपिटी, सिंक्रोनिसिटी।
बिल्कुल, या हमारे अंदर से अचानक कोई विचार या सपना आता है जो हमें सही रास्ता दिखा देता है, ये हमारे अचेतन मन से संकेत हो सकते हैं।
अच्छा,
एक और बड़ा उदाहरण पेशक देते हैं। विज्ञान कहता है कि दुनिया में चीजें बिखराव, एंट्रोपी की तरफ जाती हैं, अव्यवस्था की तरफ, लेकिन जीवन इसके उल्ट ज्यादा व्यवस्थित और जटिल कॉम्प्लेक्स होता जाता है।
हाँ, ये तो है।
पेशा इस जीवन देने वाली, व्यवस्था बनाने वाली ताकत को ही कृपा या ईश्वर का रूप मानते हैं।
लेकिन लोग इसे मानते क्यों नहीं आसानी से, या महसूस क्यों नहीं कर पाते?
क्योंकि कृपा हमारे सब कुछ मेरे कंट्रोल में है वाले भ्रम को तोड़ती है।
हाँ ये तो है।
ये मानना कि हमसे बड़ी कोई शक्ति है जो मदद कर सकती है, इसके लिए विनम्रता चाहिए। हमारा अहंकार इसे आसानी से स्वीकार नहीं करता। पेक के अनुसार विकास का ऊंचा स्तर यही है कि हम इस कृपा को पहचाने और इसके साथ मिलकर काम करें सचेत रूप से।
तो इस पूरी चर्चा से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे जरूरी सबक क्या है इस किताब के?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और बुनियादी सबक तो वही है, जीवन मुश्किल है और इसी मुश्किल को स्वीकार करने में समझदारी है। समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें विकास का मौका समझें। ये पहली बात।
बिल्कुल।
दूसरा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, अनुशासन बंधन नहीं आजादी का रास्ता है। ये वो हुनर है जो हमें अपनी इच्छाओं, डर और भ्रमों पर काबू पाने में मदद करते हैं। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं बल्कि सोच समझकर चुनाव करना है। सही कहा। तीसरा, प्यार महज एक भावना नहीं बल्कि एक सचेत कर्म और इच्छा शक्ति का काम है जिसका लक्ष्य विकास है। ये रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। क्या हम सिर्फ साथी की कंपनी चाहते हैं या उसके भले के लिए मेहनत करने को भी तैयार हैं, ये सवाल पूछना होगा।
चौथा, सच्चाई का सामना करने की हिम्मत और अपने मानसिक नक्शे को लगातार अपडेट करने की जरूरत। हमारी सोच पत्थर की लकीर नहीं होनी चाहिए। नई जानकारी, नए अनुभव के साथ उसे बदलना जरूरी है, खासकर आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां इतनी इन्फॉर्मेशन है।
और पांचवा, मन और आत्मा का जुड़ाव। एक भरा पूरा जीवन जीने के लिए सिर्फ दिमागी तौर पर स्वस्थ होना काफी नहीं है, अपनी अंदरूनी शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। एक होलिस्टिक अप्रोच।
इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ यादगार विचार दोहराएं क्या?
हाँ बिल्कुल। पहली तो वही जिसने इस पूरी यात्रा की शुरुआत की, जीवन मुश्किल है, लाइफ इज डिफिकल्ट। इसे याद रखना हमें यथार्थवादी बनाता है, जमीन पर रखता है।
दूसरी, प्रेम की वो गहरी परिभाषा। प्रेम अपनी या दूसरों की आध्यात्मिक वृद्धि के पोषण के उद्देश्य से स्वयं का विस्तार करने की इच्छा है।
लव इज द विल टू एक्सटेंड वन सेल्फ।
ये याद दिलाती है कि प्यार एक जिम्मेदार चुनाव है, सिर्फ एक एहसास नहीं।
तीसरी, वो जिम्मेदारी वाली बात का निचोड़ बड़ा सीधा और सटीक। न्यूरोटिक्स खुद को दुखी करते हैं, कैरेक्टर डिसऑर्डर वाले बाकी सबको दुखी करते हैं।
Neurotics make themselves miserable, those with character disorders make everyone else miserable.
ये जिम्मेदारी के संतुलन को समझने में मदद करता है।
हाँ, ये बहुत सटीक है। चौथी, वो नक्शे वाली बात। वास्तविकता के बारे में हमारा नजरिया एक नक्शे की तरह है। अगर नक्शा गलत है तो हम खो जाएंगे।
Our view of reality is like a map. If the map is wrong, we'll get lost.
ये हमें अपनी सोच, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है।
और एक और जो मुझे बहुत पसंद है, समस्याएं दूर नहीं होती, उन्हें हल करना पड़ता है, वरना वे हमेशा आत्मा के विकास में बाधा बनी रहती हैं।
ये हमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता है, उनसे भागने की बजाय।
ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, प्रेरणादायक हैं, पर इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ व्यवहारिक तरीके?
हाँ बिल्कुल, उतारे जा सकते हैं और उतारने भी चाहिए। जैसे संतुष्टि में देरी का सिद्धांत।
हाँ वो कैसे?
अपनी तनख्वाह आते ही पहले बचत या निवेश करें, फिर खर्च करें। या सेहत के लिए पहले कसरत, फिर आराम। छोटी छोटी चीजें। जिम्मेदारी लेना। ऑफिस में कोई गड़बड़ हो जाए तो दूसरों पर डालने के बजाय अपनी भूमिका स्वीकारें और हल ढूंढें। गलती मानना कमजोरी नहीं है।
और सच्चाई के प्रति समर्पण, वो कैसे करें? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ मुश्किल है, पर कोशिश कर सकते हैं। अपने दोस्तों या परिवार को ईमानदार लेकिन प्यार से फीडबैक दें, और सबसे जरूरी, खुद भी सुनने को तैयार रहें भले ही बुरा लगे। ये जानने की कोशिश करें कि कहीं आप अपने पुराने अनुभवों, ट्रांसफरेंस के कारण तो लोगों के बारे में गलत राय नहीं बना रहे। और संतुलन, काम और घर के बीच तालमेल बिठाना, कब हाँ कहना है कब ना, ये सोच समझ कर तय करना।
रिश्तों में पिक के प्यार की परिभाषा कैसे लागू हो सकती है, वहां कैसे काम आएगी?
बहुत काम आ सकती है। ये पूछने के बजाय कि मुझे इस रिश्ते से क्या मिल रहा है, ये सोचें कि मैं अपने साथी, बच्चे, दोस्त को एक बेहतर इंसान बनने में कैसे मदद कर सकता हूँ। उनकी बातें सिर्फ सुने नहीं, समझने की कोशिश करें। उनकी गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें सीखने में मदद करें। ये रिश्ते को ज्यादा गहरा और मजबूत बनाता है, भरोसे वाला।
बच्चों की परवरिश में भी ये बातें काम आ सकती हैं, पेरेंटिंग में।
ओह बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बच्चों को अनुशासन का मतलब सिर्फ सजा नहीं बल्कि सही चुनाव करना सिखाना, उन्हें अपनी गलतियों के परिणाम भुगतने देना उचित सहारे के साथ जाहिर है, ताकि वो जिम्मेदारी सीखें। उन्हें हर मुश्किल से बचाने की कोशिश ना करना ताकि वो मजबूत बने। ये असली प्यार है पेक के हिसाब से।
मेरे लिए इस किताब से सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अनुशासन को आजादी से जोड़ा गया है। हम तो इसे हमेशा एक बंधन समझते थे, और प्यार को सिर्फ एक भावना न मानकर एक एक्शन, एक काम समझना, ये भी एकदम नया नजरिया था। बहुत कुछ सोचने को मिला।
और मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक ये रहा कि मुश्किलों से भागना बेकार है, असली रास्ता उन्हें स्वीकार करने और पैक के बताए औजारों, अनुशासन, प्रेम, सच्चाई से उनका सामना करने में है। ये रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए तो कम चला गया है, पर शायद यही रास्ता है जो हमें सिर्फ खुशी नहीं बल्कि जिंदगी में गहरा अर्थ और सच्चा संतोष दे सकता है। ये किताब हमें भागने के बजाय लड़ने के लिए तैयार करती है औजारों के साथ।
मिलेंगे अरिव अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।